कुछ घर बनते हैं सीमेंट के, छत बनती है, तो रियल छत बनने के पहले एक टेम्पररी छत बनाते हैं लकड़ी का, जिसको फिर हटा देते हैं, उसको क्या कहते हैं, सेंटरिंग कहते हैं। सेंटरिंग, सेंटरिंग हटाने के लिए ही बनाया जाता है वो, लेकिन उसके बिना रियल घर बनेगा नहीं, रियल छत नहीं बनेगा। तो सपना अपने आप में झूठा है, लेकिन उसके ऊपर सत्य आधारित है। किस तरह से जीव अज्ञान में दुख पा रहा है, इसको समझने के लिए सपने का सहारा लिया है। और इसीलिए भगवान सबको सपना दिए, चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, सपना की फैसिलिटी सबके पास है ना। इसे तो समझ सकते हैं, ये भगवान की कृपा है वास्तव में। तो सपना में होने वाले दुख का उपाय है कि सपना तोड़ दिया जाए, आदमी जग जाए। इस तरह से देह को मैं मानने के कारण जो दुख हो रहा है, जब जीव को यह ज्ञान दिया जाएगा तुम देह नहीं हो बल्कि तुम कृष्ण के नित्य दास हो, अगर इस भावना में जो भी आया जीव कृष्ण दास कर ले विश्वास, आर भय न, जो भी उसको विश्वास हो जाता है मैं कृष्ण का दास हूं, बस सारा भय समाप्त हो। मामे अब ये प्रपद्यंते माया नेता मकरण, बहुत देर नहीं होती है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छन्ति निगच्छति, क्षण भर में व्यक्ति शांति पा सकता है। जैसे सपना टूटने के बाद तत्काल आदमी शांत हो जाता है, ऐसे संस्कृत में एक शब्द है बाधितानुवृत्ति न्याय, बाधित अनुवृत्ति। कभी कभी कोई चीज बाधित समझ में आती है कि यह नहीं है, फिर भी उसका प्रभाव कुछ देर रहता है। जैसे मान लीजिए घूमरी हम खेल चुके हैं, घूम गए और देखते हैं कि पेड़ घूम रहा है, घर घूम रहा है, हमें विश्वास है कि घूम नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कुछ देर दिखाई देता है घूमते हुए, मन में विश्वास है कि घूम नहीं रहा है, लेकिन प्रतीति खत्म नहीं होती है। तो सपना भी इसी तरह से कोई आदमी देखता है तो जगने के बाद भी कुछ भय आदि रहता है, लेकिन उस भय में और स्वप्नकालीन भय में बहुत अंतर होता है। आदमी की नींद टूट जाती है और समझता है कि नहीं नहीं तो झूठा था, झूठा था, थोड़े काल के लिए प्रभाव रहता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और कभी कभी तो लोग अच्छा स्वप्न देखते हैं तो उसी को देखना चाहते हैं रात्रि, उसी को देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सपना में नॉमिनेशन फाइल किया, वोट लड़ा और प्राइम मिनिस्टर बन गए, सपना अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया और मंत्रिमंडल बना रहा है, विभाग बांट रहा है, ये नियम वो नियम सब लगा रहा है, और इसी बीच में कोई उसको जगा दे तो हो सकता है, कह सकता है अरे यार मैं तो राष्ट्रपति हो गया था, बहुत खराब किया तो हमको जगा दे, तो उसका सपना चलने दीजिए, कितना देर चलेगा, और चले भी तो क्या राष्ट्रपति हो गया है, बेड पर सोया हुआ है और हो सकता है उठ करके रिक्शा चलाएगा वो कहेगा ओहो मैं राष्ट्रपति हो गया था, अब तो मुझे रिक्शा चलाना पड़ेगा, ऐसा गलत किया, जगा दिया तो सपना सपना है। बहुत लोग कहा करते हैं हम सपनों को साकार करेंगे, हमारा मीठा सपना, हमारा ये सपना, सपना पूरा नहीं होगा, जितना देखे उतना ही काफी है, और वो आगे सपना क्या जाएगा। कभी कभी तो लोग ये भी कहते हैं, सोते हैं दूसरे दिन तो कहते हैं वो कल वाला सपना फिर आ जाता है ऐसे ऐसे अज्ञानी जी है। खैर भगवत विषय सपना आवे तो कामना करनी चाहिए कि फिर भगवान आ जाए आ जाए आ जाए। राधा रानी कृष्ण के विरह में कहती हैं कि धन्या सखी ते आलियो स्वप्ने पश्यन्ति कांतम, ऐसे पूछे अस्माकं तु गते कृष्ण गता निद्रा की बहनी, वे अरि सखियों वे नारियां धन्य हैं जो सपने में भी अपने प्रियतम से मिल लेती हैं। लेकिन मेरा तो ऐसा दुर्भाग्य है कि अस्मा कम तु गते कृष्ण, कृष्ण जब चले गए तो ये बैरी निद्रा भी उसी दिन से चली गई। निद्रा ही नहीं आती है कि कुछ सपना देखो। क्योंकि एक सपना जो है वो नींद की बेटी है या बेटा है, जो भी है, और सपना ही नहीं आ रहा है तो अरे नींद ही नहीं आ रही है तो सपना कहां से आए। लेकिन संसारिक जो भी ये दुख है जीव को, रियली उसे तो हमको ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल स्वप्न है। जीव को कोई दुख नहीं है, जो ही वो जगता है, कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है, भगवान को पाता है, समझने लगता है, तब समझ जाता है कि अरे मैं किस भरा करता हूं, मेरा तो वास्तविक जीवन यह है। यह निशा सर्वभूता नाम स्वयं जागृति संयमी जस्यम जागृति भूता निशा निशा पश्यत मुने। तो जगना क्या है? जगना है कृष्ण भावनामृत में होना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो जाए, यही जागृत जीवन है। बाकी तो सब सपना है, सोया हुआ जीवन है, दुख है। यहाँ शब्द दे रहे देहाभिमान जम तापम, देह को मैं मानने से जो दुख हो रहा है उसको ज्ञान खत्म कर देता है। ठीक उसी तरह जैसे नहीं चंद्रमा दिन के ताप को उसी तरह समाप्त करता है जैसे ब्रज जोशिता तापम मुकुंदा। कौन सी दृष्ट होगा, कौन रात्रि आएगी कि कृष्ण संगीलन होगा, फिर रात विहार होगा, ये सोचते एक एक पल करोड़ों करोड़ों युग के समान दिखता है। तो दिन भर की जलन को मुकुंद भर लेते हैं ब्रज गोपियों को, और देहाभिमानस पाप को ज्ञान भर लेता है। ठीक उसी प्रकार जैसे चंद्रमा सूर्य के किरण से उत्पन्न हुए पाप को भर लेता है। अभी थोड़ा सा शीर्षक दे रहा है सुखदेव गोस्वामी, लेकिन इसका बहुत बड़ा विस्तार हो सकता है इस व्याख्या का। यह श्रीमद् भागवतम सप्ताह वास्तव में पाप दूर करने के लिए है, जीव को सुखी करने के लिए है, और एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, सात दिन के लिए, दस दिन के लिए सुखी करने के लिए नहीं, इंटरनली सुखी करने के लिए है। इससे ज्ञान उत्पन्न होता है, यहाँ बोध शब्द है, तो भागवत सुनने से बोध उत्पन्न होता है। और गोपियों की जहां तक बात है, सुखदेव गोस्वामी चूंकि गोपीजनों के दास है, भक्त है, उनके चित्त पर चढ़ा हुआ है गोपियों का स्मरण, तो चंद्रमा को देख करके और शीतल किरणों को अनुभव करके जो गोपियों के चित्तवृत्ति का विश्लेषण कर रहे हैं कि कृष्ण को देख करके, कृष्ण से मिल करके उनका उनकी जलन चली जाती है। तो गोपी का दुख क्या है? कृष्ण से भेंट न होना। और गोपी का सुख क्या है? कृष्ण का दर्शन। वो कृष्ण से और कुछ चाहती नहीं, कृष्ण ही उनके लिए सबसे बड़े सुख है। तो इस प्रकार बीच में सुखदेव गोस्वामी गोपी जनों की बहुत याद करते हैं, दुख दूर होता है। खम शोभत निर्मेघम शरद विमल तारकम सत्युक्तम जथा चित्तम शब्द ब्रह्मार्थ दर्शनम। शरद विमल तारकम, शरद काल में खम आकाश विमल तारकम हो जाता है, तारे बिल्कुल चमकने लगते हैं, तारों में कोई मलिनता नहीं रह जाती, आकाश साफ हो जाता है, देखने लायक बात है। वास्तव में शरद काल में देखना चाहिए आकाश में किस तरह चंद्रमा उग रहा है और तारे भी उगते हैं। तो खम अशोभक निर्मेघम, आकाश बहुत सुंदर लगता है, क्यों? निर्मेघ हो जाता है, बिना मेघ के आवरण नहीं रह जाता है चंद्रमा पर और ताराओं पर, उसको निर्मेघ कहते हैं। और शरद विमल तारकम, तो उसमें तारे बहुत सुंदर चमकते हैं, चंद्रमा चमकता है। ठीक उसी तरह से जैसे शुद्ध चित्त में जब चित्त सत्गुण से युक्त होता है तो उसमें शब्द ब्रह्म के अर्थ का दर्शन हो जाता है अपने आप। शब्द ब्रह्म क्या है? वेद, श्रीमद् भागवतम, ये भगवत गीता, इसको शब्द ब्रह्म कहते हैं। तो यह आकाश के समान है, शब्द ब्रह्म आकाश के समान है, और उसके अर्थ क्या है? उसका अर्थ जो है वो तारा और चंद्रमा के समान है। श्रीमद् भागवतम में बहुत अर्थ है, कुछ तारा है, कुछ चंद्रमा है। चंद्रमा कौन है? भगवान कृष्ण। वेदश्च सर्वै रहमेव वेद्यो। शब्द ब्रह्म के सार कौन है? कृष्ण। लेकिन चित्त में तब तक भगवान नहीं समझ में आते हैं जब तक तमोगुण रजोगुण रहता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, सर्वकालीन आकाश है, मेघ नहीं है, चंद्रमा उगा है, तारे उगे हैं, साफ दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से कोई वेद पढ़ता है, भागवत पढ़ता है, सब पढ़ता है, लेकिन उसका चित्त रूपी आकाश जब निर्मेघ हो जाता है, उसमें तमोगुण नहीं रहता, रजोगुण नहीं रहता, तब वह वेद के अर्थ को ठीक ठीक समझ जाता है। साफ वेद में दिखाई पड़ने लगता है कृष्ण ही सार है, और नहीं तो फिर निराकार और ये वो वेद पढ़ पढ़ करके। कुछ लोग तो भ्रष्ट हो जाते हैं वेद पढ़ करके, आजकल कहते हम ओरिजिनल वेद मानते हैं, हम पुराण नहीं मानते, हम वेद मानते हैं। वेद क्या मानते हैं? बादल छाया हुआ है, वेद का एक भी अर्थ टिमटिमा नहीं रहा है तुम्हारे हृदय तो घना बादल छा जाए आकाश में, तो वास्तव में आकाश में चंद्रमा है, तारे हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ेंगे। जिस व्यक्ति के हृदय में तमोगुण है, अज्ञान है, जो भगवान का भक्त नहीं है, उस शास्त्र पढ़कर के भी उसके अर्थ को नहीं समझ पाएगा कि इसमें क्या चमक रहा है। साफ पढ़ना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यो, समस्त वेदों के द्वारा मैं वेद्य हूं। एक व्यक्ति अभी 3-4 महीने पहले हमसे दिल्ली के पास एक गांव में पूछा, वेदों में कृष्ण नाम आया है, वेद में कृष्ण का कहां वर्णन है, वो पूछे। मैं कह दिया कहां नहीं वर्णन है ये बताओ, तुम एक वाक्य बताओ जिसमें कृष्ण का वर्णन ना हो। भगवान तो कहते हैं वेदैश्च सर्वै अहम एव वेद्य, वेद के एक एक अक्षर में, एक एक वाक्य में, सेक्शन में, सब में मैं ही वेद्य हूं, मेरे बारे में ही बताया गया। ये कहा जाए कि ये आप कैसे जानते हैं? तो कहा मैं ही वेद बनाया हूं वेदांत कृत वेद विवेचा हूं, मैं वेद बनाया इसलिए मैं जानता हूं। तो क्या लिखा गया है वेद में? मेरे बारे में लिखा गया, बस मैं ही वेद हूं। तो अब बताइए, जो व्यक्ति गीता पढ़ता है, भागवत पढ़ता है, या वेद पढ़ रहा है, पुराण पढ़ रहा है, यदि वह कृष्ण का भक्त नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि वह वेद को समझ नहीं रहा है। यह सुखदेव गोस्वामी आकाश में उगे हुए चंद्रमा और ताराओं को देखकर कहते हैं, तो इसी तरह से जब चित्त सत्वयुक्त होता है, केवल सत्वगुण होता है, तो शब्द ब्रह्म का जो अर्थ है उसका दर्शन होता है। शब्द ब्रह्मार्थ दर्शन, शब्द ब्रह्म का अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है? कृष्ण है। और ये तारे जो है वो क्या है? वो कृष्ण के परिकर, जैसे अगले श्लोक में ये बात आएगी, इसी को और व्याख्या के साथ समझाएंगे कि सुधर्मा सभा में भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अथवा ब्रज में गोप सखाओं के बीच इस तरह से विराजते हैं जैसे आकाश में चंद्रमा तारों के बीच में विराजता है। यही है वेद का अर्थ। वास्तव में वेद के सार अर्थ है भगवान कृष्ण, और कृष्ण के साथ उनके परिकर, उनका धाम, उनके भक्त, उनकी गौएं, उनके उनकी जमुना, उनका वृक्ष, दूध, यही है वेद का अर्थ। और क्या वेद का अर्थ हो सकता है? और इस बात को कोई अरे गहरे आदमी नहीं बोल रहा है, सुखदेव गोस्वामी जैसा विद्वान बोल रहा है जिसको सब लोगों ने माना। वहां भगवान वेदव्यास बैठे हैं, नारद मुनि बैठे हैं, वशिष्ठ जी बैठे हैं, वो लोग विवाद चल रहा था पहले उन लोगों में कि क्या बताया जाए महाराज परीक्षित को, क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी आए तो सब विवाद बंद हो गए। सब लोगों ने माना कि जो ये कहेंगे वही फैक्ट होगा। और उनके गुरु महाराज बैठे हैं, पिताजी वेदव्यास पंत जी, और उनके भी गुरु नारद जी बैठे हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी वास्तव में भागवत के अलावा और कोई कुछ काम नहीं करते, इसलिए भागवत को सही सही वो जानते हैं। वो सुनने के लिए लोग बैठ गए तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ वेद के अर्थ को खोल रहे हैं, तो किसी को संदेह न रह जाए। शब्द ब्रह्मार्थ दर्शनम, शब्द ब्रह्म के अर्थ का दर्शन तब होता है जब हृदय सत्वगुण से युक्त होता है। जैसे आकाश में जब बादल हट जाता है, बादल तमोगुण स्थानीय है, काला है, जब वो हट जाता है तब चंद्रमा दिखाई पड़ता है। तो अब मिलान कर रहे हैं, अखंड मंडलो व्योमनि रराजो गणेशसि जथा जदुपति कृष्णो वृषि चक्रावृतो भुवि। उसी की व्याख्या कर रहे हैं। व्योमनि, व्योम में, आकाश में, अखंड मंडल शशि रराज, पूर्ण चंद्रमा, अखंड मंडल, जिसका मंडल खंडित ना हो उसको अखंड मंडल कहते हैं। मतलब पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन सूर्य अखंड मंडल रहता है, न खंडित मंडलो जस्य, उसका मंडल खंडित नहीं होता, और दिन खंडित रहता है। तो शशि चंद्रमा को कहते हैं, शस का चिन्ह रहता है चंद्रमा में, शस माने खरगोश, आप लोगों ने देखा होगा ध्यान से, कुछ ऐसे चिन्ह काला काला रहता है। तो अखंड मंडल शशि उडू गणई ताराओं के साथ व्योमनि रराज, व्योम में बहुत सुंदर लगता है, ठीक वैसे जथा जदुपति कृष्ण, जादवों के पालक भगवान कृष्ण विष्णु चक्रावर्तो भूमि, इस पृथ्वी पर जदुवंशियों की सभा में बैठते हैं तो सुंदर लगते हैं, अथवा गोपों की सभा में बैठते हैं तो सुंदर लगते हैं। उस श्लोक का अर्थ खोला जा रहा है वास्तव में। उन्होंने कहा दिया शब्द ब्रह्मार्थ दर्शनम, लेकिन उस शब्द ब्रह्म का क्या अर्थ है, वो है ये कृष्ण। तो कृष्ण चंद्रमा के स्थान में है और अन्य जादव उनको परिकर ताराओं के स्थान में है, और यह पृथ्वी जो है वो आकाश स्थानीय है। अगर उस पृथ्वी को आकाश कहा जाए तो इस पर कृष्ण चंद्रमा है, कृष्ण चंद्र, और उनके परिकर गोप सखा या जादव ये तारा। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी सारी कथा को कृष्ण पर सिंपलाइज कर रहे हैं, कृष्ण पर ला रहे हैं, इसको भागवत कहते हैं। ये कोई शरद का वर्णन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं समझना चाहिए जैसे अन्य आयुर्वेदिक कवि ऋतु वर्णन करते हैं वैसे ये ऋतु वर्णन हो रहा है। ये वास्तव में भागवत है, भगवान का गुण गाया जा रहा है। तो हम लोग भी कई बार इस बात को देखे होंगे शरद काल में चंद्रमा को, आकाश को, ताराओं को, लेकिन जिसके मन में जो बात होती है वो उभर जाती है। सुखदेव गोस्वामी तो पूर्ण भागवत पुरुष है, परम भागवत है, महाभागवत। चंद्रमा और ताराओं को देखकर उनको कृष्ण की याद आ रही है। कृष्ण इसी तरह बैठते हैं अपने सखाओं के साथ और सुंदर लगते हैं। हम लोग भी दुनिया में दृश्य देखते हैं तो जो जिस स्तर का व्यक्ति होता है उसको उसी तरह की बात याद आती है ना, जो जैसा होता है उसको उसी तरह की बात याद आती है। एक आपसे छोटी सी घटना सुना रहा हूं अपने जीवन की। नदी के तट पर एक आश्रम है हमारे गांव में, तो मैं आश्रम पर जाता था, भजन करता था। एक दिन की बात थी, नदी में मछलियों का प्रलय हो गया है, लय लगना कहते हैं, कुछ पानी में ऐसी गंदगी हो जाती है कि कुछ मछलियां ऊपर आने लगती है अपने आप। तो उस समय मछली मारने वाले लोग मछलियों को जाकर पकड़ लेते हैं, मारते हैं। तो मैं जा रहा था नदी की ओर, मैं मछली मारने के लिए नहीं जा रहा था, जा रहा था ऐसे। तो एक लड़का था, गाय चरा रहा था, वो हमसे कहा कि साधु जी हमारे लिए भी मार लाइएगा, हमको फुर्सत नहीं है गाय दुखने की, हमको भी थोड़ा मछली मार लाइएगा। वो बेचारा जानता नहीं था कि ये लोग नहीं खाते हैं या नहीं मारते, केवल मैं नदी की ओर जा रहा था और लोग भी जा रहे थे, तो उसके मन में तो ये बात बसी थी कि मछली चाहिए और सारी दुनिया मछली खाती होगी, इसीलिए वो कहने लगा कि हमको भी मछली ला दीजिएगा। तो मैं हंसने लगा कि देखो इसके चित्त में यही बात बैठी है, तो वही देख रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी के हृदय में तो कृष्ण के अतिरिक्त कुछ है नहीं, तो इसीलिए चंद्रमा को देख कर, ताराओं को देख कर तो कृष्ण की याद करते हैं कि चंद्रमा उसी तरह आकाश में सुंदर लग रहा है व्योमनी, जैसे भूमि पृथ्वी पर बिस्वी चक्र आवृत बिस्वी समुदाय से घिरे हुए भगवान कृष्ण सुंदर लगते हैं। ये कितना सुंदर उदाहरण। अच्छा, अब एक बार तो उन्होंने कहा कि गोपियों का दुख भगवान श्री कृष्ण हर लेते हैं, लेकिन जब तक श्री कृष्ण मिले नहीं रहते हैं तब तक किसी भी संसारिक सुख सुविधा से गोपियों को सुख नहीं होता है। बता रहे हैं, आश्लिष्य समशीतोष्णम प्रसून वन मारुतम जनास्तापम जहुर गोप्यो न कृष्ण हृतचेत सह। जना सामान्य पब्लिक, सामान्य जन शरद काल के समशीतोष्ण वायु का स्पर्श करके, जिस वायु में प्रसून वन मारुतम फूलों की सुगंध रहती है, जिस वायु में उस वायु का समशीतोष्ण वायु को आश्लिष्य उसका अनुभव करके तापम जहु सबका दुख दूर हो जाता है। ये रात्रि के समय का वर्णन कर रहे हैं। दिन में तो गर्मी रहती है, लेकिन रात्रि में हवा चलती है तो ये हम लोगों का अनुभव है कि वो हवा शरदकालीन वन के पुष्पों की सुगंध लेकर चलती है और शीतल मंद पवन होती है, तो उस हवा को पा करके सब लोग सुखी हो जाते हैं। कितना सुख है, कितना आराम। परंतु गोपियों का दुख दूर नहीं होता है। अब वो समशीतोष्ण हवा से सुखी होने वाली नहीं है, बल्कि उनका दुख और बढ़ जाता है। यह साइकोलॉजी है कि स्त्रियों के हृदय में अपने प्रेमी के विरह में और दुख हो जाता है, जबकि प्रकृति सुखमय होती है तब और दुख बढ़ जाता है। यदि बसंत ऋतु हो, कोयल गान कर रही हो, मंद पवन चल रहा हो, तो उसको और विरह की ज्वाला होती है, उसे सुख नहीं मिलता है। तो अन्य लोग थे तो सुंदर हवा पाकर सुखी हो गए, लेकिन गोपियों का दुख बढ़ गया। उनका सुख क्या है? कृष्ण को पाना। जब तक कृष्ण नहीं पाए मिले तब तक दुनिया का कोई वैभव या सुख उनके लिए सुख है नहीं। अब तुलना करके देखिए संसार में, ये अपनी दूसरों की, हम लोग ऐसे हैं कि संसार की छोटी छोटी चीज मिलती है तो अपने पास आओ ओके नो प्रॉब्लम, दुख है ही नहीं, सब ठीक, छोटी छोटी वस्तु से सुखी हो जाते हैं। लेकिन गोपीजन बिना कृष्ण के सुखी नहीं हो सकती। इसी तरह का कोई जब महान उन्नत भक्त होता है तो वह कृष्ण के बिना सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितना भी सुख की सामग्री उसके पास हो, लेकिन वह कृष्ण से सुखी होता है, वस्तु से नहीं। यही तो रोग है वास्तव जीव का कि वह वस्तुओं को पाकर संतुष्ट हो गया। ये प्राकृतिक जगत है, बहिरंगा माया शक्ति के द्वारा बनाया हुआ, इसमें तो कुछ भी दम नहीं है, लेकिन यही की वस्तु को पाकर, यही के व्यक्ति को पाकर के मनुष्य प्रसन्न हो रहा है, जो भगवान के विरह की अनुभूति ही नहीं हो रही। जब भगवान श्री कृष्ण के विरह की अनुभूति होने लगे, उनके लिए जी छटपटाने लगे, तब समझना चाहिए अब कुछ कुछ कृष्ण भावना में हम विकास कर रहे हैं। और तो और इस और महा और जगत की वस्तुओं को छोड़ दीजिए, कोई भूख से व्याकुल आदमी है उसको खाने को दिया जाए तो खा करके कहता ओहो दुख मिट गया, खत्म हो गया, कोई दुख नहीं। किसी को सोने के लिए बढ़िया रूम दे दीजिए तो हाँ बस बस आराम हो गया, कोई दुख नहीं। हम लोग भूले हुए हैं पूरा संसार, लेकिन गोपियां में जना तापम जहू, लेकिन कृष्ण हृत चेत गोप्य न, जिनके चित्त को कृष्ण चुरा लिए हैं, हर लिए हैं, वे गोपियां कभी सुखी नहीं होती थी संसारी के हवा से या पानी से या भोजन से या किसी भी वस्तु से। कृष्ण उनके चित्त को हर लिए थे। इस प्रकार शरद का वर्णन चल रहा है। अब कहते हैं शरद काल में गावो मृगा खगा नारज पुष्पी या सरदा भवन अनीय माना शब्द से फल ऋष क्रिया। शरद काल में, शरद काल के द्वारा, शरद काल में गौए मृगियां मादा पक्षी मतलब नारियां, जितने पक्षियों में नारी पक्षी हैं, मृग में नारी मृग मान मृगिणिया हरिणिया और मादा पक्षी और गौए, ये सब ऋतुमती हो जाती हैं। मतलब इनको इच्छा होती है कि मैं गर्भ धारण करूं, इसको संस्कृत में ऋतुमती होना कहते हैं या पुष्पिणी होना। जब कोई स्त्री गर्भ धारण करना चाहती है या गाय या पक्षी, तो इसको पुष्पिणी कहते हैं। शरद काल में विशेष करके स्त्री जाति में इस तरह का आवेग होता है, गर्भ धारण करना चाहती है। पशुओं में तो आपने स्पष्ट देखा, या पक्षियों में भी, पशु में गाय यदि गर्भ धारण करना चाहती है तो उसको मनुष्य ले जाता है सांड के पास, गर्भ धारण करती है। तो गावो मृगा खगा नारज, नारियां मनुष्यों के लिए कह रहे हैं और बाकी सब स्त्री जाति के लिए, शरद काल के कारण पुष्पिणी हो जाती है। तो जब पुष्पिणी हो जाती है, गर्भ धारण करना चाहती है, तो उनके जो वृष हैं, उनके जो पुरुष हैं, गौओं के पीछे बैल सांड और इस तरह से जो उनके पुरुष हैं उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। वो जहां जहां जाती हैं वहां वहां जाते हैं, पुरुष फॉलो करते हैं स्त्रियों को। ठीक वैसे ही जैसे शुभ कर्म के फल, शुभ क्रियाओं को, शुभ क्रियाओं का फल अनुगमन करते हैं। यदि कोई अच्छा कर्म किया है तो फल मिलेगा उसको, क्रियाओं के पीछे पीछे फल चलता है। जैसे गाय जहां जहां जाती है वहां वहां सांड जाता है, ये देखी हुई बात। तो आदमी जहां भी जन्म ले, जहां भी जाए, जो कुछ इस क्रिया किया है, इस क्रिया का खास अर्थ होता है ईश्वर के लिए क्रिया। यदि कृष्ण की भक्ति वो किया है, कृष्ण की सेवा किया है, तो उस सेवा का जो फल बना है वो फल उसके पीछे पीछे जाएगा, जहां भी जाएगा वो जाएगा। अजीब उदाहरण सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। जो भी हो, फल जो है पुल्लिंग है, पुरुष है, और क्रिया स्त्रीलिंग है, इसलिए ये जोड़ी बैठा है। प्राय ऋतुमती स्त्री के पीछे पति चलता है, या सांड चलता है, या मृग चलता है मृगी के पीछे, या नर पक्षी मादा पक्षी के पीछे चलता है। तो जितने भी फल हैं शुभ कर्मों के, वे पीछे पीछे चलते हैं क्रियाओं के, जो किए हैं वो मिलेगा। और इस क्रिया का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए जिसने कोई कार्य किया है, कुछ भी सहायता किया है भगवान के, तो वो तो फल उसका पीछा करेगा। समय आने पर शरद आएगा, वो पीछा करेगा, मतलब जब फल मिलने का टाइम होगा तो उस क्रिया के अनुसार उसको फल मिलेगा। अपने आप नहीं चाहेगा तब भी मिलेगा। ये शरद काल में प्राय हम लोग देखते हैं गांव में। तो इस तरह क्रियाओं का अनुगमन उसके फल करते हैं। निश्चित विश्वास रहना चाहिए, करना चाहिए, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। फल मिलेगा, शुभ कर्मों का भी फल मिलता है, अशुभ कर्मों का भी फल मिलता है। तो भगवान की सेवा करने वाले भक्तों को विश्वास रखना चाहिए, भगवान प्रसन्न होते हैं और उसको फल देंगे। और भक्त के लिए तो फल क्या है, भगवान की सेवा हुई यही फल है। वो चाहता नहीं है लेकिन फिर भी उसे मिलेगा। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि गौएं चाहती नहीं है कि हमारे पीछे इतने बैल दौड़े,
इतने साल चले, लेकिन वो दौड़ते हैं। तो एक कुतिया के पीछे बहुत से कुत्ते चलते हैं। तो इस तरह से चाहे आदमी चाहे या न चाहे, फल उसके पीछे चलेंगे। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर भगवान के सेवा के महत्व पर बल दे रहे हैं। इस तरह शरद का वर्णन है। उदय हृष्यन बारे जाने सुरगत खाने कुमुद बिना राज्ञा तो निर्भया लोका जता जथा दक्षिण बिना निर्भर। सूर्य के उगने पर बारी जाने कमल खिल जाते हैं, लेकिन कुमुदनी के बिना, कुमुदनी नहीं खिलती है, कुमुद बिना छोटा कमल होता है। कुमुदनी रात में खिलता है और कमल दिन में खिलता है। तो सूर्य के उगने पर कमल खिल जाते हैं, कुमुदनी नहीं खिलती है। उसी तरह जैसे राजा के होने पर, राजा के देश में घूमने पर लोग निर्भय हो जाते हैं, लेकिन दस्यु सब छिप जाते हैं, डाकू चोर बदमाश सब छिप जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। वो देखते हैं कि बहुत अच्छा शासन आ गया, तो अब जहां तहां छिप जाते हैं। एक ये उदाहरण दिया उन्होंने। अच्छा, पूरा ग्राम आग्रहणे, पूरा ग्रामी स्वाग्रहणे इंद्रिय महोत्सव बभव भू पक्व ससाध्य कलाभ्या मित्रान हरे। पूर्व में नगर में गांव में अगहन के महीने में जब नया नया अन्न होता है, तो वैदिक मंत्रों से बहुत से उत्सव होने लगते हैं। इंद्रियों के लिए उत्सव होते हैं या इंद्र विषय उत्सव होते हैं बहुत बड़ा बड़ा। तो उस समय यह पृथ्वी बहुत सुंदर लगती है, खास करके जब श्री कृष्ण और बलराम इस पृथ्वी पर हैं, इसलिए यह पृथ्वी बहुत सुंदर लगती है। कार्तिक महीने का वर्णन कर रहे हैं। हरे कला भू नित्यानंद भव, भगवान की कला है पृथ्वी, शक्ति है। और जब यह देखती है कि कृष्ण और बलराम साक्षात भगवान मेरे पर हैं, तो यह पृथ्वी वैकुंठ से भी अधिक भाग्यशाली अपने को मानती है, बहुत सुंदर लगती है। बभव सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अतिशयेन सुशोभा, ये अतिशय सुंदर लगती है पृथ्वी। तो जब पृथ्वी कृष्ण बलराम के संसर्ग से सुंदर लगती है, तो यही सिद्धांत सबको लागू करना चाहिए। यदि हमारे जीवन के साथ कृष्ण का संबंध हो जाए, तो हम भी सुंदर लगेंगे। वाणी सुशोभित होती है उनका नाम गा करके, कान सुंदर हो जाता है उनका जस सुनकर, हाथ सुंदर होता है उनकी सेवा करके, जीवन धन्य हो जाता है कृष्ण को सेंटर में पाकर के, परिवार वास्तव में देवता बन जाता है यदि कृष्ण सेंटर में आ जाए तो, शोभा बढ़ जाती है। हम लोग तो कई जगह प्रचार करते हुए घूमते हैं, एक वैष्णव परिवार इतना अच्छा लगता है, उसको हम शब्दों में नहीं वर्णन कर सकते हैं। वास्तव में जिस घर में जाइए और ठाकुर जी हो, बच्चा है, स्त्री है, स्त्रियां सेवा करती हैं, कभी बच्चा सेवा करता है, तो बहुत सुंदर लगता है। आज हम लोग गए थे वहां डॉक्टर साहब के घर में, ये दिखाए कि बच्चे के डीपी अलग हैं और बच्ची के अलग है, इनके अलग है, मैं इन दोनों के तो एक ही है, कई डीपी हैं। तो और बच्चे मानते हैं कि कृष्ण हमारे हैं, तो वो कुछ सेवा में लगते हैं, उनको प्रैक्टिस हो रहा है, अभ्यास हो रहा है। अब वह परिवार देखने में कितना सुंदर लगता है। इस तरह के बहुत परिवार हैं इधर भारतवर्ष में भी बहुत हैं। तो इस तरह क्यों इतना परिवार सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि कृष्ण के साथ संबंध हो गया। कृष्ण न रहे तो धनी होते हुए भी वो डिकोरेटेड मरघट की तरह घर लगता है बस। लेकिन भगवान है तो सुंदर लगता है। अभी यही घर है, इसमें प्रभुपाद जी हैं और भगवान है, तो ये कुछ दूसरे रूप में लग रहा है। और ये न रहे, फर्नीचर सजा दीजिए तो ये इधर कंप्यूटर उधर कंप्यूटर, केवल ऑफिस हो और कृष्ण से कोई संबंध ना हो, तो लेकर कृष्ण से संबंध करना चाहिए। अब अंतिम वर्णन कर रहा हूँ शरद ऋतु का। वणिक मुनि निरपस्नाता निर्गम अर्थान प्रपेदिरे वर्ष रुद्धा जथा सिद्धा स्वपिंडान काल आगत। वर्ष रुद्धा वर्षा के कारण वणिक मुनि नृप और स्नातक ये चारों एक जगह रहते हैं, घूमते नहीं है। जैसे व्यापार करने वाले लोग जो गर्मी के महीने में व्यापार करते हैं घूम घूम करके, वर्षा के कारण वो व्यापार कर नहीं पाते, एक जगह रहते हैं चातुर्मास में। और मुनि सन्यासी आदि भी एक जगह रहते हैं। वर्षा काल में कीड़े बढ़ जाते हैं, अंकुर घास पात अभी बढ़ जाता है, इसलिए वो ट्रेवलिंग नहीं करते क्योंकि उससे हत्या होती है और पानी भर जाता है इधर उधर, इसीलिए ये फिशिंग नहीं करते हैं। नृप राजा भी 8 महीने घूमते हैं, दिग्विजय आदि करते हैं, युद्ध करते हैं, लेकिन बरसात के दिन में अपनी राजधानी में रहते हैं। और स्नातक विद्यार्थी पढ़ने वाले गुरुकुल आदि के लड़के घूमते नहीं है, एक जगह रहते हैं। लेकिन जब शरद काल आया तो सब निकल निकल कर अपना अपना काम करना चालू किए। जो वर्षा से रुक गया था काम वो चालू किए। तो इसी तरह से जो लोग सिद्ध हो जाते हैं तो समय आने पर उनको अपनी सिद्धि का फल मिलता है। जैसे कोई भक्त है भजन करके पक्का हो गया है, लेकिन समय आने पर उसे पार्षद देह मिलेगा, ये भगवान की सेवा करेगा, तो समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जैसे वर्षा काल में रुक करके चारों प्रतीक्षा करते हैं, राजा मुनि वणिक और स्नातक। तो काले आगते समय आने पर अपना अपना भाग पाते हैं। समय पर कोई चीज वस्तु मिलती है वास्तव में, उकताने से नहीं मिलती। अच्छा कर्म करते चलना चाहिए, समय पर फल मिलेगा। इस प्रकार ये शरद का वर्णन है। अब कल शरदकालीन लीला का वर्णन किया जाएगा, वेणु गीत का। बहुत सुंदर अध्याय है श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्ण तो कुछ अनाउंस भी करना है डॉक्टर साहब। हाँ। कैसा है? ठीक है, अभी तो आधा घंटा टाइम है।
कार्यक्रम के बारे में आपको बताना चाहूंगा, बहुत लंबा छोड़ा है।
क्रिया शब्द लिखा गया, कर्म शब्द नहीं, क्रिया। भक्ति भी एक क्रिया है और इस क्रिया लिखा गया, इस का अर्थ होता है ईश्वर, भगवान। भगवान के लिए किया हुआ कर्म और के लिए किए हुए कर्मों का फल हो सकता है ना मिले। जैसे असुरों ने अमृत समुद्र मंथन किया लेकिन उनको फल नहीं मिला, लेकिन भगवान के लिए किए गए कर्मों का फल निश्चित मिलेगा। क्रिया शब्द में वो भक्ति के लिए कहा गया, अकर्म के लिए ही कहा गया। उसका ही फल होता है, लेकिन बंधन करने वाला नहीं होता है। जो फल बंधन करे उसको कर्म कहते हैं, मेरे तो मुक्त करने वाला होता है। असली तो उसी में दुख का आभास होता है, लेकिन उस सूक्ष्म शरीर के अनुसार उसको एक स्थूल शरीर वहां दिया जाता है, यातना शरीर कहते हैं, नरक भोगने के लिए। उस शरीर से दुख भोगता है, नरक भोगने के लिए एक शरीर दिया जाता है उसके योग्य। वो मरने के बाद मरता नहीं है, काटने के बाद भी जुड़ जाता है, दुख होता है मरता नहीं, उसे यातना शरीर कहते हैं। जी हाँ, तो उस शरीर में उसका अटैचमेंट रहता है खूब जमकर। ठीक है, ऐसा ही शरीर उसको मिलता है, वो दुख देने के लिए मिलता है उसको, क्योंकि वो तो स्पिरिट सोल है, बिना शरीर के दुख उसको होगा नहीं। तो शरीर को दुख दिया था, मान लेता मुझे दिया जा रहा है, अटैचमेंट के कारण दुख। धर्म शब्द का अर्थ धर्म है, धर्म माने वर्णाश्रम धर्म। मनुष्य कई वर्ण में आश्रम में बटा हुआ है, उसे कहे मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है, मैं गृहस्थ हूँ तो मेरा एक धर्म है, मैं सन्यासी हूँ तो मेरा ये धर्म है, मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरा ये धर्म है। तो इन समस्त धर्मों को छोड़ करके भगवान की शरण लेनी चाहिए। यदि ये धर्म भगवान की शरण लेने में सहायक है तो उनको करे। जैसे स्त्री है, स्त्री का धर्म है भगवान की सेवा करना, लेकिन इसके साथ ही साथ उसका धर्म है पति की सेवा करना। तो पति की सेवा करना यदि उसे भगवत धर्म में बाधित नहीं कर रहा है तो ठीक है पति की सेवा करे, लेकिन जहां भगवान की सेवा में बाधा होने लगे तो पति की सेवा छोड़ सकती है। वहां सर्व धर्मान का तथा कथित फैले हुए दुनिया में धर्म नहीं, तो सब अधर्म है। जिनको धर्म कहा गया है ये अधर्म है, ये धर्म नहीं है। धर्म का भी वर्णाश्रम धर्म, धर्म शब्द से यही प्रचलित है। तो जो जीव मान लेता है कि हमारा ये कर्तव्य है, और वास्तव में उसका कर्तव्य वेद बताया है, किंतु ब्राह्मण होते ये कर्तव्य है, स्त्री होते ये कर्तव्य है, सन्यासी होते ये कर्तव्य है, गृहस्थ होते ये धर्म है। कोई भी धर्म जब भगवान के शरण में जाने से में बाधा दे तो उसको छोड़ छाड़ करके जाना। भगवान के शरण लेना, उनका भजन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उसके लिए भगवान ने कहा है। आजकल सर्व धर्म परित्यज्य जो लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं दुनिया में फैले ये सब धर्मों को छोड़, ये तो धर्म है ही नहीं। कोई आप कभी सोच सकते कि गाय खाना धर्म कभी हो सकता है? लेकिन दुनिया के जितने भी तथाकथित धर्म हैं उनमें गाय का भोग लगाना प्रथम है, वही खाना उनको खाना है। ये तमोगुण से दिमाग ग्रस्त हो गया है, इतनी बात समझ में नहीं आ रही। संज्ञा दे दी जाती है धर्म, धर्म धर्म छोड़ना आसान नहीं है, इसलिए भगवान अधर्म छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। अधर्म छोड़ने के लिए तो बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं है, गीता में तो धर्म छोड़ने के लिए कह रहे हैं। अधर्म छोड़ने में क्या है? शराब न पीना, मांस न खाना, जुआ न खेलना, पर स्त्री का मन न करना, हो गया खत्म हो गया। इसको तो पशु भी नहीं कर रहे हैं, है ना? वो भी जुआ कभी नहीं खेले होंगे, शराब पीना जानते ही नहीं। कोई कोई जीव तो मांस भी नहीं खाते, पक्षियों में परिस्त्री गमन है ही नहीं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, धर्म छोड़ा जाए भगवान के लिए ये बहुत बड़ी बात। गोपियों ने धर्म छोड़ा, नारी धर्म जो पति की सेवा होती है, परिवार की सेवा, कृष्ण के लिए छोड़ दिया, इसको धर्म छोड़ने को। नैमिषारण्य के ऋषियों ने धर्म छोड़ दिया, ये यज्ञ कर रहे थे लेकिन भागवत सुनने के लिए सब छोड़ दिया। जी धर्म का वास्तविक अर्थ है कर्तव्य, अपना जो सोशल या स्पिरिचुअल जो भी कर्तव्य होता है जीव का अपने स्वरूप के अनुसार, उसको धर्म कहते हैं। अपना अपना जैसे नारी धर्म है तो नारी धर्म मतलब नारी का कर्तव्य है, पुरुष धर्म राजधर्म राजा का कर्तव्य ड्यूटी, हाँ ड्यूटी शास्त्रों के अनुसार या लोक के अनुसार। जीव की है ड्यूटी क्या है? जीव की सर्वोपरि ड्यूटी है धर्म है, वो भगवान से प्रेम करे। सवई पुंसाम परो धर्मो जतो भक्ति रहो, भगवान से प्रेम करना यही जीव का सहज धर्म है। ये कोई भी काम जो इस प्रेम को बढ़ाने में मदद करे तो धर्म है। उसके बाद सेकेंडरी धर्म है पति के नाते से सास ससुर की सेवा करना, देवर की सेवा करना, जेठ की सेवा करना और सब करना। लेकिन वह स्त्री यदि अपने पति को छोड़ करके दूसरे की सेवा करने लगे तब तो सारा अधर्म हो जाएगा। इन पति की सेवा को केंद्र में रख करके उनके नाते से यदि पति के भाइयों की सेवा करती है, पति के पिता की सेवा करती है, माँ की सेवा करती है, ठीक है। इसी तरह से हम कृष्ण के रह करके भगवान के हो करके और कृष्ण के नाते से यदि किसी की सेवा करें, गुरु की सेवा करें या देवता की करें या किसी मनुष्य की भी करें, जीव की भी करें, यह जान करके कि कृष्ण का है और कृष्ण के नाते से करें तब ठीक है। नहीं तो कृष्ण को भूल करके कुछ भी करें तो सब बेकार। कुछ लोग तो कृष्ण को बिल्कुल नहीं जानते हैं और गुरु को पूजते हैं, तो बेकार है एकदम टोटल। यह देवता को पूजते हैं। अर्जुन ये मान रहे थे कि मैं अमुक वंश का हूँ और हमारे दादा हैं, हमारे भाई हैं, हमारे ये हैं, हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि मैं इनको मारूं, इनसे स्नेह करूं। तो देह के अनुसार अपने धर्म को समझ रहे हैं। भगवान ने समझाया मैं जो कह रहा हूँ उसको करना तुम्हारा धर्म है। कि कब से कुरुकुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, इससे पहले तो तुम थे नहीं कुरुवंशी, बाद में भी नहीं रहोगे, संबंध तो तुम्हारा मेरे साथ है। जैसे कोई पति अपनी पत्नी को डांटे कहे कि तुम ये आज्ञा पालन करो और पत्नी कहे कि नहीं, देवर हमारे सब कुछ है, सास ससुर सब कुछ है, आपसे मेरा क्या मतलब, आप जो करें नहीं मान। तब पति कहे कि सब धर्मान परित्यज्य मां मे कौन शरणम भ्रज, सब छोड़ो और मेरी शरण। कि मेरे स्वजन है, ये है, वो है, ऐसे है, ऐसे है, मैं कैसे मारूंगा, पाप लगेगा। भगवान ने कहा सब धर्म छोड़ो, पाप जो लगेगा मैं माफ कर दूंगा। तुम सब धर्म छोड़ो, मैं सब पाप से मुक्त कर दूंगा। श्लोक देखिए कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मान एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। कोई पाप बाकी नहीं रहेगा। अच्छा ये बात है, तो सर्व धर्मान परित्यज्य तब सर्व पापे सीधा हिसाब है। हमें सारे पापों से बचा लूंगा, कोई पाप नहीं लगेगा, चलो लड़ो मारो कोई पाप नहीं लगेगा। मैं जगत की सृष्टि किया हूँ, मैं मारने के लिए कह रहा हूँ, इसमें पाप कौन लगाएगा तुमको, है कि नहीं। नियम बनाने वाले सब भगवान है, क्या पाप है क्या पुण्य है। अर्जुन कह रहे थे रथ पर बैठे बैठे, अहो बत महत पापम कर तुम व्यवस्थिता बयान, हम लोगों ने महापाप करने का निश्चय किया है और वही किए, वही महापाप फिर किए। कर इससे बच दम तो
शुरू शुरू में अर्जुन को मान्यता थी,
उनको सब समय मालूम था, लेकिन जब कृष्ण चाहे तो विस्मृत हो गए थोड़े काल के लिए, लेकिन उस समय भूले नहीं। कृष्ण ने कहा कि ये कचरा तुम्हारे मन में कहाँ से आ गया, जो दया की बात कर रहे थे लौकिक धर्मों के, तो भगवान के ये फालतू विचार है, कहाँ से तुम्हारे मन में आ गया, युद्ध भूमि में इस प्रकार का विचार भवन में करना चाहिए था, यहाँ ये क्या हो गया। तो अर्जुन कहते हैं मैं कैसे भीष्म पितामह को मारूंगा, कैसे द्रोणाचार्य पर बाण चलाऊंगा, क्या आप अपने गुरु संदीपनी से युद्ध कर सकते हैं, हमको तो प्रेरित कर रहे हैं हमारे गुरु का वध करने के लिए, क्या आप दुर्गाचार्य को मारेंगे। कई गुरु को कोई मारता है, पितामह को कोई मारता है, आप अपने वसुदेव जी को मारेंगे। हम तो तीनों लोगों का राज्य अगर मिले तब भी नहीं युद्ध करेंगे, ये छोटे से राज्य के लिए क्या बात। तब भगवान मानो अंत में कहते हैं तब तब अब कह दिया जाए सेना को लौटने के लिए, ठीक है युद्ध नहीं करोगे। युधिष्ठिर महाराज से कह दिया जाए कि अब लौटिए युद्ध मत कीजिए, तो कहते नहीं हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। कार्तव्य ने दोस्तों कहता स्वभाव परीक्षा में काम धर्म समुद्र चेता, धर्म के विषय में मेरी बुद्धि मूढ़ हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन समझ रहे थे कृष्ण की आज्ञा को टाल करके चल देना भी आसान नहीं, महिमा जानते थे भगवान की। इसीलिए कहते हैं कि जब श्रेयस्याद निश्चितम पुरोहितम में शिष्यस्ते हम साधिमान काम के पद, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका मित्र नहीं हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। आप सोच करके जो कहेंगे वही ठीक होगा, आप बताइए। लेकिन इतना कहने के बाद भी अर्जुन कहते हैं कि युद्ध के अलावा जो कुछ बताना है बताइए। इतना कहना युद्ध से आई थी, लेकिन फिर भी अर्जुन समर्पण किए, भगवान की महिमा को जानते थे। अर्जुन देखना चाहते थे, अविश्वास नहीं था, विश्वास करके कह रहे हैं। सर्वम एतद् ऋतम् मन्ये जन्मं वक्षि केशव, आप मान लीजिए कोई बहुत बड़े आदमी हो गए, मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आप हैं, लेकिन कहूँ कि जरा मैं देखना चाहता हूँ कैसे आप ऑफिस में बैठते हैं, क्या कंट्रोल करते हैं। तो ये अविश्वास नहीं है, बट आप जो कुछ कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है देखने की। हाँ ठीक, ये भी है, ये आगे चल करके कोई भी ऐसा कह सकता था कि मैं भगवान हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ, ब्रह्मांड घुमा रहा हूँ, तो उसे तुरंत पूछना चाहिए ठीक है विराट रूप दिखाओ, और न दिखाओ तो उसका पेट खा कर देखना चाहिए कि क्या है, कितना विराट रूप इसका है। विराट रूप दिखाए, साढ़े 3 मिनट का शरीर है तो विराट रूप है, हार चाल से बना हुआ शरीर। भगवान तो दिखा दिए विराट रूप, उतना बड़ा विश्व विजेता युद्ध योद्धा अर्जुन थर थर कांपने लगे, उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये कृष्ण है। और कहते हैं कि आख्या ही में को भगवान उग्र रूप हो, आख्या ही मुझे बताइए आप भयानक रूप वाले कौन है। अरे जिससे तुम दिखाने को कह रहे हो वही तो है, और कह रहे कौन हो तू, कौन है आप, कौन है आप, मुझे तो पूर्व पश्चिम कुछ भी नहीं सूझ रहा है, इधर क्या है, ऊपर है नीचे, अरे बाप रे बाप, मेरा तो हार्ट अटैक कर जाएगा, आप कौन है कौन है। तो भगवान उसी पोज में बोलते हैं, कालो श्री लोक क्षयकृत प्रवृत्तो, मैं काल हूँ और लोगों का नाश करने पर तुला हुआ हूँ, तुम्हारे बिना भी अभी बचने वाले नहीं है, तुम धनुष उठाओ और जस ले लो, चलो उठाओ, नहीं तो तुम्हारे बिना भी बचे नहीं। अर्जुन देख रहे थे कि इनके दांतों के बीच दुर्योधन कर्ण आदि पीसे जा रहे हैं भात और रोटी के टुकड़े की तरह, तो चबा रहे थे कच कच कृष्ण, तो अर्जुन थर थर कांपने लगे, कहते हैं विषो न जाने न लभे च शर्मा, मुझे कोई दिशा का पता नहीं है किधर मैं खड़ा हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, हम मुझको मत खाइएगा। जब कर्ण को दुर्योधन को सबको खा रहे हैं तो हो सकता है अर्जुन को भी ले ले उसी लाइन में। देखो देखो, अब भगवान ने कहा और भी वीरों को देखो, दोनों पक्ष के वीरों को देखो मेरे मुख में। तो अर्जुन वो पूछे कि अब कौन है, तब भगवान ने ऐसे कहा, लेकिन भगवान कहते माते व्यथा माच विमूढ भाव, भय मत करो, दिमाग खराब नहीं होना चाहिए तुम्हारा, मैं वही तुम्हारा मित्र हूँ, कृष्ण हूँ, तुमको बार बार समझा रहा हूँ कि तुम ये करो वो करो, तुम फिलॉसफी जा रहे हो। तब अर्जुन कहते हैं तब ये रूप छोड़कर उसी रूप में हो जाइए, जल्दी हो जाइए, मैं उसी को देखना चाहता हूँ। तो भगवान हो गए, तब अर्जुन बिल्कुल फिट हुए और माफी मांगने लगे कि मैं आपको सखा कहा, कृष्ण कहा, जगनंदन कहा, आपके बराबर आसन पर बैठा। प्राय अर्जुन व्यंग करते थे कृष्ण के साथ, क्योंकि दुनिया में झूठ बोलने में कृष्ण का नाम था। तो अर्जुन कभी कभी कहते थे कि कृष्ण एक बात है कि आप झूठ के निकट तो कभी गए ही नहीं, तुम तो झूठ तो बोलते नहीं हो, मतलब व्यंग कर रहे थे कि तुम झूठ बोलते हो। अर्जुन झूठ नहीं बोलते थे, युधिष्ठिर महाराज झूठ नहीं बोलते थे, एक बार केवल कृष्ण के कहने से बोले, लेकिन भगवान तो जो बोल दे वही सत्य है, झूठ सांस से परे है। तो अर्जुन विनोद में कहा करते थे कि आप तो झूठ बोलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, इसलिए अर्जुन माफी मांग रहे थे, मेरे द्वारा जो आपका अपमान हुआ है क्षमा कर दीजिए। ये है भगवान की भगवत्ता। विराट रूप उन्होंने दिखाया तो अर्जुन विश्वास करके पूछे तब दिखाया। भगवान ने उसको दिखाने के बाद कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मया प्रसन्न न तवार्जुन एदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगम, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ इसलिए तुमको दिखाया हूँ रूप। चैलेंज से भगवान नहीं दिखाने वाले थे। दुर्ग माने कठिनाइयां होता है, दुर्ग जैसे किला को कहते हैं। दुर्ग माने दुर्गम स्थान जहाँ जाना कठिन है, प्राय विपत्तियों को, क्लेशों को, जन्म मरण को दुर्ग कहते हैं। तो सर्व दुर्गाणी का अर्थ है समस्त संकटों को, समस्त कठिनाइयों को पार कर जाओगे, मुझमें चित्त लगेगा तो तुम सब कठिनाइयों को पार कर जाओगे, इसलिए सदा मुझमें चित्त रखो।
जब विष्णु पितामह बोले थे पांडव ही धरती हो जाएंगे महाभारत के युद्ध में,
क्या
पांडव ही धरती हो जाएगी, 500 पांडव चले जाएंगे मर जाएंगे, और विष्णु पिता जी बोले जब महाभारत का युद्ध चल रहा था बोला कि पांडव ही धरती होने की है, करो अर्जुन इज लिविंग, तो भगवान ने क्या लिखा किया?
मैं वो ये कहे कि या तो कल पांडव मरेंगे और नहीं तो कृष्ण को प्रतिज्ञा छोड़नी पड़ेगी, तो कृष्ण के स्वभाव को जानते थे, वो जानते थे कृष्ण प्रतिज्ञा छोड़ेंगे, पांडव क्यों मरेंगे। और वही हुआ भी, वो तो भगवत तत्व तो वेता है, द्वादश महाभागवतों में से एक है भीष्म पितामह, तो भगवान के स्वभाव को जानते थे इसीलिए वो प्रतिज्ञा किए थे, ऐसा नहीं था कि वो पांडव को मारने वाले थे, ऐसा नहीं कहा, वो जानते थे कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा छोड़ेंगे, और अपनी प्रतिज्ञा छोड़ेंगे तो भगवान की बेइज्जती नहीं होती है और बल्कि इज्जत बढ़ती है। दुनिया में कोई भी वीर यदि युद्ध छोड़कर भाग जाए, रण छोड़कर भाग जाए तो उसकी बेइज्जती होगी, लेकिन ये रण छोड़ भी पूजे जाते हैं। है ना, बताइए युद्ध से भागने वाले की पूजा होती है। इनका सब कुछ विलक्षण है, कुछ भी काम करे फिर भी कृष्ण सुंदर है, उन पर ये जगत के नियम लागू नहीं होते हैं, छोट काम या बड़े काम, ये सारथी बने तो छोटे थोड़े हो गए, दूत बने क्या क्या बने। तो भीष्म पितामह भगवान के स्वभाव को जानते थे, ऋषियों के सामने कहते हैं कि ये सब वही भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुनः, ये साक्षात भगवान है नारायण, ये जान करके प्रतिज्ञा किए थे।
ऐसे
प्रश्न जैसे आप पूछते हैं तो शास्त्रों में इस तरह के प्रश्न अलग पूछे गए हैं, तो जो उत्तर दिया गया है मैं वही कहूँगा। जैसे महाराज परीक्षित आमरण अनशन व्रत लेकर गंगा जी के तट पर बैठे थे, तो जब पूरे वर्ल्ड में खबर चली गई, पूरे ब्रह्मांड में परीक्षित शरीर छोड़ने वाले हैं, तो समस्त ऋषि मुनि आया वहाँ, ये भागवत के प्रथम स्कंध के 19वें अध्याय में है, तो सब लोग आए, तो वहाँ पर अब 7 दिन के अंदर महाराज परीक्षित के कल्याण पर विचार किया जाने लगा, सब लोग विचार क्या करना चाहिए जिससे राजा वैकुंठ जाए, भगवान के धाम में जाए, क्या इनको करना चाहिए। वो राजा थे इसीलिए उनको बताने के लिए बहुत लोग आए, तो जैसे टीका में लिखा गया है या ऋषियों में बातचीत भी हो रही है, तो कोई कोई कहता है कि इनको दान करना चाहिए, दान से शुभ गति होती है, राजा है ही, कोई कहते थे कि इनको अष्टांग योग करना चाहिए, जैसे जम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, योग के 8 अंग, कोई कोई कहते थे कि इनको ब्रह्म चिंतन करना चाहिए, इनको यह करना चाहिए वह करना चाहिए, बहुत बहुत लोग बातें बता रहे और सब विवाद चल रहा था तब तक सुखदेव गोस्वामी आए उसी विवाद में, और जिन ही वे आए तो सब लोग खड़े हो गए क्योंकि सारे जगत में विख्यात है कि सुखदेव गोस्वामी का जो विचार है सोधा हुआ है, वो जो कहेंगे वो परफेक्ट होगा। सभी आए बैठे उनका चरण धोए महाराज परीक्षित, इसके बाद कहे कि आप जैसे महात्मा के स्मरण मात्र से गृहस्थों का घर पवित्र हो जाता है, फिर चरण धोने को मिले, आपसे बातचीत करने को मिले, आपसे आपका चरण छूने को मिले, आपके मुख से सुनने को मिले, तो कहना ही क्या, मैं सब तरह से पवित्र हो गया। लेकिन फिर भी आप ये बताइए कि जो सद्य मरण म्रियमाण है वो अपने कल्याण के लिए क्या करे, मुझे 7 दिन केवल जीना है। तो आप सर्वसम्मति से सबसे श्रेष्ठ हैं, तो आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी दूसरे स्कंध शुरू में ही कहते हैं, पहला है कि बल्या नैषते प्रश्न कृतो लोक पर आत्मविद सम्मत पुंसम श्रोतव्याद से यह पर, यह महाराज आपका जो प्रश्न है इस लोक का बहुत बड़ा हित होगा, ये प्रश्न जगत का हित करने वाला है, क्योंकि आप अपने हित के विषय में पूछ रहे हैं तो उसी में सबका हित है। जैसे सनातन गोस्वामी ने पूछा चैतन्य महाप्रभु से कि के आमी के ने आमाय जारे तापत्रा, मैं कौन हूँ और मुझको क्यों 3 प्रकार का दुख दिया जा रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु उत्तर देते हैं उनको ही नहीं, कहते हैं आप ही नहीं, जितने जीव हैं, जीवे का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। के आमी का ये उत्तर मैं कौन हूँ तो केवल उनके लिए ही नहीं, कहते हैं कि जीव मात्र कृष्ण का नित्य दास है, तो आप कृष्ण के नित्य दास हैं। जिन जात जाने तापत्र है तो कृष्ण भोली सही जीव अनादि बढ़े मुख अतएव मायाताय देव संसार दुख, तो वर्णन करते हैं। इसी तरह से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज आपका ही हित नहीं, आपने जो प्रश्न किया है इससे सारे जगत का हित होगा। तो उत्तर तो बहुत विस्तार से है लेकिन सार में यही कहते हैं, तस्मा भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य श्रोतव्य क्षता भय, भगवान हरि का कृष्ण का श्रवण करना कीर्तन करना और स्मरण करना बस यही है सबसे श्रेष्ठ विधि उनको प्राप्त करने के लिए। तो इसमें भी सबसे श्रेष्ठ क्या है तो वे कहते हैं सुनना, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप बैठे और सुन लो बस। अगर इसके अतिरिक्त तो और कोई साधन रहा होता इतना बलवान तो कराया जाता महाराज परीक्षित से, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने मना किया कि आपको कुछ भी नहीं करना है, और स्वयं कहते हैं कि मैं अपने पिता से श्रीमद् भागवतम सुना हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप सुनिए बस, कुछ भी नहीं करना है। और महाराज परीक्षित ने कुछ नहीं किया, और अभी 3 अध्याय वे बोले भागवत, तो आप भागवत द्वितीय स्कंध में देखिए महाराज परीक्षित कहते हैं, बल्कि 2.5 अध्याय 3 अध्याय नहीं, वो कहते हैं राज्य में परिवार में और सब जगह मेरी जो भी ममता थी सब समाप्त हो गई आपके प्रवचन से, और अब इस तरह से कथा हमें सुनाई भगवान का गुण सुनाई जिससे कि मेरा मन पूर्ण कृष्ण में लग जाए, मैं शरीर छोड़ दू। तो सुखदेव गोस्वामी चालू किए और द्वितीय स्कंध पूरा होते होते महाराज परीक्षित कहते हैं कि मेरा मन पूरा कृष्ण में लग चुका है, वे अपना अनुभव सुना रहे हैं और महाराज परीक्षित सुने और सब सुने, वास्तव में सुनने से बढ़कर के और कुछ भी नहीं। अरे आज का युग है आदमी का दिमाग जो है ग्रस्त हो गया, स्थूल हो गया है, कुछ क्रियाएं देखना चाहता है, जैसे आप जप करने के लिए कही है तो दूसरे पंथ वाले लोग कहते हैं इसमें तो कोई क्रिया नहीं, तो छोटा सा हरे कृष्ण करना है, वो कुछ क्रिया देखना चाहते हैं। जैसे आज श्रीपाद धनुधर महाराज जी सुना रहे थे कि हमारे गुरु भाई भक्ति भृंग गोविंद महाराज इटली में प्रवचन कर रहे थे, तो प्रवचन में वे रघुनाथ दास गोस्वामी के भजन का वर्णन कर रहे थे कि वे 1 लाख जप करते थे, 1000 वैष्णव को दंडवत करते थे, भगवान को दंडवत करते थे, ऐसे करते थे, खाते थे बिल्कुल थोड़ा, सोते नहीं थे, रात दिन हरे कृष्ण जपते रहते थे, मानसी सेवा करते थे भगवान की। तो जब ये कह दिए और अंत में हुआ यानी क्वेश्चन, तो एक भक्त क्वेश्चन करता है, हाँ ये सब करते थे लेकिन सेवा क्या करते थे भगवान, और वो बेचारा तो ये सब जो देखता है घूम घाम करके पुस्तक बेचना चाहे और करना, इसी को बेचारा समझा कि ये सब सेवा है। जो रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में पुस्तक सेवा क्या करते थे भगवान, जब तो करते थे ठीक है। अब बताइए, यदि हम आज इस बात को कह रहे हैं कि सुनना सबसे श्रेष्ठ है, तो ऐसे बहुत से लोग होंगे इस पृथ्वी पर जो कहेंगे ये क्या है, ये तो कोई सेवा वह है नहीं। ये बात दिमाग में समझ में नहीं आएगी, अगर यह सबसे श्रेष्ठ नहीं होता तो भगवान वेद व्यास, नारद जी और सुखदेव गोस्वामी सब वहां थे, उन्होंने क्यों नहीं कहा नहीं नहीं इनको कुछ और करना चाहिए, यही सबसे श्रेष्ठ है। और वास्तव में इस कान बनाया गया है कि लोग बैठे सुने, कीर्तन करें भगवान का, डिस्कशन करें। बच्चे का मदगत प्राण है बोधयंत परस्परम कथियम पश्च मान नित्यम तुष्यंति च रमंति च, यही तोष है, यही रमण है। कथियम पश्च मान नित्यम, मेरे बारे में कहा जाए सुना जाए बोधयंत परस्परम, यही सबसे बढ़ करते हैं वास्तव में, ये ऑलरेडी सिद्ध है। ऐसे इसके साथ सहायक और भी है, लेकिन हर मार्ग यही है सबसे श्रेष्ठ।
कहते हैं योगी लोग अपना शरीर अभी इच्छा से छोड़ते हैं, उनके लिए डेट टाइम प्लेस नहीं,
इच्छा के अनुसार छोड़ते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि अच्छा समय मिले, अच्छा देश मिले कि छोड़े। इच्छा का यही मतलब होता है, इच्छा का मतलब ये नहीं होता है कि वे विचार नहीं करते हैं देश काल पर। ऐसे चाहते जैसे हरदास ठाकुर एक योगी थे, तो वे चैतन्य महाप्रभु के सामने शरीर छोड़ दिए, वे नहीं चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु के विरह में हम मरे, उनके सामने उनका नाम लेते हुए आंखों से उनको देखते हुए चरण कमल छाती पर रख करके शरीर छोड़। तो योगी जो इच्छा मृत्यु होता है तो वह सुंदर काल जो होता रहता है, सुंदर समय जो होता रहता है, कहीं भगवान के धाम में शरीर छोड़ेंगे या उचित काल में या वैष्णवों के बीच, इस तरह से वो चाहता है। जैसे भीष्म पितामह शरीर छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि भगवान के सामने छोड़ेंगे, और वही हुआ।
सूर्य को तारायण होने का भी रास्ता देता है,
वो देख रहे, वो भी एक अच्छा काल है, लेकिन उस काल में भी शरीर छोड़ते नहीं, शरीर छोड़ना चाहते थे भगवान के सामने। काल उत्तरायण है ठीक है, वो भी एक सहायक है, वो है मकर संक्रांति के बाद चालू होता है, लगभग 14 जनवरी के बाद समय चालू होता है।
वो इतने 6 महीने तक करीब वो बाण छाया पर है
जी? नहीं,
कितने समय तक रहते
वो? 58 दिन रहे थे, लगभग 2 महीने।
तो वैसा इसलिए वो बाण छाया पर होते रहे, उससे है क्या
ऐसा हो कि महाभारत युद्ध होने के बाद युधिष्ठिर महाराज और कृष्ण सब चले गए हस्तिनापुर, गंधारी को संतोना देनी थी, महाराज धृतराष्ट्र को राज्य संभालना था ना, एक राज्य पलट चुका था, दूसरा राजा बना था, तो वहाँ जाकर के शासन व्यवस्था देखना, सब कुछ करना, इसमें देर हुई, कई दिन लग गए, उसके बाद वे लोग आए, तो कई दिन प्रवचन किए भीष्म पितामह, इस कारण से इतना दिन लग गया।
के
रेगुलर रेगुलर है उनके लिए, वही शोभा की बात है, वीर थे ना वो, तो जिस दिन गिरे तो उनका सिर लटक रहा था, सिर में बाण नहीं लगा था, तो उन्होंने कहा कि मेरा सिर लटका है, इसको ऊंचा करो, तो दुर्योधन अभी जाकर के तकिया लाए, तकिया ऊंचा करने के लिए कह लाए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इस सज्जा के अनुरूप तकिया चाहिए, तो अर्जुन समझ गए, तो उनके ललाट में 3 बाण मारे और खच नीचे गए और नीचे जाकर को उठा दिए सिर, तो जो बेड दिया था वही तकिया दिया। अद्भुत कथाएं हैं शास्त्र में, ये बिल्कुल सत्य है। जी हाँ,
जो प्रोसेस है उसमें आचरण की कोई जरूरत है?
बहुत जरूरत है, ध्यान है,
खाते
जी
खाते, तो उनको भी
ध्यान के नहीं, वो तो कुछ भी विकास नहीं कर सकते, कहते भर हैं, ध्यान है अष्टांग योग में सातवीं भूमिका है। पहले है यम, क्या नहीं करना चाहिए तो यम कहते हैं, और नियम का अर्थ करने लायक कुछ नियम है। इसके बाद है आसन, आसन के बाद है प्राणायाम, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद धारणा, धारणा के बाद तब ध्यान है। तो जो यम नियम ही नहीं जानता है, घर का नील ही नहीं पड़ा तो छत कैसे डाल देगा, वो तो बेकार है, वो तो फालतू। आजकल के लोग अपने मन से कहा करते हैं, ध्यान कोई करना कोई नाटक नहीं है। भगवान में मन लगाने के लिए कुछ नियम पालन करना होता है। ध्यान का मतलब है मन में भगवान को देखना, है ना, यही अर्थ है ना। ध्यान अवस्थित कर गतन मनसा प्रशांत यम योगिना। तो भगवान के बारे में सुने नहीं, कोई नियम पालन नहीं, ना स्नान न कुछ भी, ये सब तो मन कहाँ से लगेगा। अभी जिसका मन अंडा में लगा है वो कैसे भगवान में लग जाए। मन लगा है तभी तो खा रहा है ना, तो कैसे ध्यान हो जाएगा।
भरत महाराज ने सब कुछ छोड़कर जंगल में आ गए, और उसका जब उसने देखा हरणी को बचा लिया, अपना कर्तव्य का अपना पालन किया, और फिर कब उसको छोड़ने का था,
किसको
हिरण को कब छोड़ने का,
वो कहाँ छोड़े, तो उसी के मोह में शरीर छोड़े हरिण हो गए। अच्छा आप उसने कब उसको छोड़ देना चाहिए था और कब कहा जाए नदी से निकाल कर छोड़ देना चाहिए था। अपने परिवार में भी यही प्रश्न होता है कि इन हरिणों को कब छोड़े। कोई सोचते आप जन्मा दिए है तो पाले पोसे पढ़ा रहे हैं, फिर सोचते हैं बेचारे का विवाह करा दे, विवाह करने के बाद कुछ जाप पकड़ ले कमा ले, तब तक फिर सोचते हैं कि इसके लड़के का मुख देख ले। यही अज्ञान होता है वास्तव में। इतना तो जरूरी था कि उसको जल से निकाल दे, निकाल कर छोड़ देते, चाहे बाघ खाता चाहे कुछ भी, सारी जिम्मेवारी थोड़े लेकर आए। जंगल में कितने बाघ खाते होंगे हरिणों को, क्या क्या वो भजन करने आए हैं कि सब हरिण बचाने आए हैं। हमारे समाज से तो उनको निकाल करके छोड़ देना चाहिए, मरता चाहे कुछ भी कर। अब अपना अपना हिसाब देखना चाहिए, कहाँ तक साथ देना है, कितना देना है। अब परिवार से भी प्रेम करने का मतलब ये नहीं कि सवेरे जगह और बस परिवार में ही लग गए। 9 बजे तक तो उनको शत्रु समझना चाहिए, भगवान में लगा है। शास्त्र कहता है कि 2 याम तक परिवार नहीं, 1 याम तक, 6 बजे मान लीजिए जग रहा है कोई, तो 9 बजे तक अपने परिवार को शत्रु समझे, उनसे बात नहीं कुछ भी नहीं, भगवान की सेवा करे, और इसके बाद तब उनका मित्र बन जाए, उनके लिए कमाए चाहे कुछ भी करे, फिर शाम को आए तो भगवान के पास जब रहना हो तो फिर उनको शत्रु समझे। ये लिखा गया है।
उठने के बाद 3 घंटा
तो कोई हिसाब नहीं है, बिल्कुल शत्रु ही न समझ। अगर मान लीजिए पति है, अगर पति पत्नी को शत्रु समझ लिया और वो भी भोजन बनाना छोड़कर उसको शत्रु, 9 बजे के बाद एक दूसरे के लिए काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। एक सेंस है वास्तव में कि बचना चाहिए आसक्ति से, भगवान में प्रेम बढ़ाना चाहिए। सवेरे सवेरे चित्त की धारा भगवान में लगे, और बाकी काम भर व्यवहार रखे, कमाना है परिवार के, बच्चे का पोषण करना धर्म है वास्तव में। वो हमारे परिवार जो है, बच्चे खासकर बच्चा और स्त्री, ये किसी के स्नेह के स्वाभाविक पात्र है।
कितने घंटे लगाना चाहिए भगवान को,
किसी भी गृहस्थ को कम से कम भगवान के भजन में 3 घंटा लगाना चाहिए, 1 याम कम से कम, 24 घंटा मिला करके
सब मिलकर सेवा
नहीं, खास करके जप आदि, भोजन बनाना उनाना उसमें कोई नहीं होगा। ग्रंथ पढ़ना जपना खास करके 3 घंटा, ये पूजा आ जाएगा उसमें, पूजा इन कुंडे
में।
राधा
रानी कृष्ण की अधीन है और कृष्ण राधा रानी के। हाँ।
तो
जब वो वृंदावन छोड़ के चले गए तो वापस कभी नहीं आए, तो क्या वो राधा रानी के बस्ती बात थी कि वो जाए जिस चीज के लिए गए थे? वो अधीन है और नहीं भी है, स्वरूप से अधीन नहीं है और प्रेम से अधीन है, लेकिन वास्तविक बात यह है कि वृंदावन छोड़कर कृष्ण गए नहीं, वृंदावन परित्यज्य पाद में कम न गच्छति, लेकिन गए भी तो इसमें अब अधीन का ही मतलब नहीं है कि नहीं जाएंगे, प्रेम के अधीन है। राधा रानी के लिए प्रकट रहते थे ब्रज में, लेकिन बाह्य रूप से गए, 100 वर्ष तक ब्रज में नहीं आए, कुरुक्षेत्र में प्रथम मिलन हुआ। फिर अधीन का अर्थ ये नहीं है कि अब कृष्ण उनके अधीन है तो अब घर में बंद करके रखेंगे, उस अधीनता का यह अर्थ नहीं होता है। और वास्तविक बात है कि कृष्ण किसी के अधीन नहीं है, स्वरूप से एकला ईश्वर कृष्ण आर सब धृत, जैसे जैसे न चाहे तैसे कर ले, वो चाहे राधा रानी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे यशोदा जी हो, सभी धृत है कृष्ण, कृष्ण परम ईश्वर है स्वरूप से। प्रेम के बस में तो यशोदा के गोद में है, राधा रानी के साथ है और सब है, लेकिन प्रेम के बस में है तो इसका अर्थ ही नहीं कि उनका प्रेमी केवल राधा रानी है और कोई नहीं है। और ज्यादा सब जेल में बंद थे, माता पिता मथुरा में थे, कारागृह में थे, उनको भी तो जाकर के दर्शन देना था कि केवल एक ही प्रेमी के पास पड़े रहे, और भी तो प्रेम करने वाले कृष्ण से थे, उनको भी देखना था ना।
एक ये गोपी प्रेम के बारे में, ये गोपियों से भागवत के
डिस्क्रिप्शन
में तो ऐसा लगता है कि गोपी हमेशा
दुखी दुख मनाती। नहीं नहीं आएगा कि भगवान के बारे में गा करके वो बहुत सुखी रहती थी, चाहे आरती कर लेना चाहिए भागवत की, फिर भगवान की आरती आए जल्दी जल्दी कर ले। विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सारस्वतदेव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चादेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इत्थं शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना वातम सगो गोपाल कोच्यतः। श्री शुकवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, बोले शब्द उत्थान इस प्रकार जैसा पहले वर्णन किया गया, शरत स्वच्छ जलम शरद के कारण
जिसका जल स्वच्छ हो चुका था ऐसे वृंदावन में पदमा पर सुगंधिना कमल के समूहों के कारण जो सुगंधित थी ऐसे वायुना वायु से वातम व्याप्त वनम वन में कृष्ण ने प्रवेश किया न विषाद प्रवेश किया सबो गोपालकों गयों और गोपालकों के साथ अच्युत अपने सौंदर्य आदि से कभी जो भी नहीं होने वाले एवं सर्गम वर्णित्वा वर्षा तत्र श्री भगवत क्रीड़ा विशेषण आह इत्थम इत्यादि यावत समाप्ति। तो सुखदेव गोस्वामी शरद का वर्णन किए जैसा आप कल सुन रहे थे तो एवं सर्गम वर्णित्वा इस प्रकार शरद का वर्णन करके उस शरद ऋतु में भगवान की विशेष क्रीड़ा का वर्णन कर रहे हैं जैसे वर्षा काल का वर्णन करके और वर्षा कालीन लीला का वर्णन किए इसी तरह वर्णन करते हैं क्योंकि उस वर्ण में भगवान की लीला हुई वृंदावन में ब्रज में। तो इस श्लोक में और अगर ये वन का वर्णन करते हैं सबसे पहले जलवायु का वर्णन करते हैं जल और हवा को जलवायु कहते हैं। जलवायु का वर्णन करने के द्वारा सुखदेव गोस्वामी वृंदावन के पर में मनोहर स्वरूप का संकेत कर रहे हैं। तत्र जलस्य मनोहरत्वं स्वच्छत्वेन च स्पष्टमेव निर्मलत्वेनैव सहज गुणाधिगत जल का मनोहरत्व और स्वच्छत्व तो यहाँ स्पष्ट वर्णन किया जा रहा है और वायु की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं कि पद्माकरों के सुगंध से सुगंधित वायु बह रहा है। इससे सरोवर आदि का भी वर्णन हो गया हवा का वर्णन हुआ और हवा के तीन गुणों का वर्णन किया गया सुगंधिना इति सुगंध है और सरोवरों से वह हवा स्पर्श करके बह रही है इसलिए शीत है और मंद गति से चल रही है। इस अध्याय में श्री गोपी जनों के कृष्ण के प्रति स्नेहातिशय का वर्णन है गोपियों का कितना अनुराग है भगवान कृष्ण में गोपियों के वाक्यों से ही उसका पता चलता है। और वास्तव में भागवत का अध्ययन करने वाले सुनने वाले लोगों के लिए अध्ययन का सबसे मुख्य विषय है भक्तों के हृदय में जो कृष्ण भक्ति है उसको समझना और उसके अनुसार करना। भगवान श्री कृष्ण के अनेक भक्त हैं प्रेमी हैं और किस तरह कृष्ण से स्नेह करते हैं कितना प्रेम करते हैं इन बातों को जानना आवश्यक है। और यदि भक्तों के उस प्रेम को सुन करके पढ़ करके लोभ उत्पन्न हो जाता है कि मैं भी ऐसा बनता मुझे भी यह प्रेम मिलता तब समझना चाहिए कि भागवत पढ़ने की यही सफलता है। उस प्रकार की इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए सब कुछ है इच्छा पर निर्भर है। वास्तव में इस जगत में बहुत भारी समस्या है कि लोगों के मन में भगवान के प्रेम को पाने की या भगवान को पाने की कोई इच्छा नहीं है। इच्छाओं से मन भरा हुआ है खाली नहीं है लेकिन कई कई प्रकार की इच्छाएं कुछ ऐसे भक्त भी होते हैं जो भगवान से भी सांसारिक बातें मांगते हैं भगवान से प्रेम नहीं करते भगवान को एक साधन के रूप में समझते हैं। तो अन्य लोगों से भी अच्छे हैं क्योंकि भगवान से उनका संबंध हो रहा है, कृष्ण से संबंध होता है, तो वे अच्छे हैं, लेकिन फिर भी जीव का यह सहज स्वरूप है कि वह कृष्ण से प्रेम करे। तो ये सुनना आवश्यक है किसने प्रेम किया, किस तरह प्रेम किया, किस स्थिति में उसका प्रेम बढ़ता ही गया, घटा नहीं, तो इसको सुनना आवश्यक है। जितने भी भगवत प्रेमी हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं गोपिकाएं, ब्रज की गोपियां। उन्होंने लोक की अपेक्षा छोड़ दिया, वेद की अपेक्षा छोड़ दिया, स्वजन का त्याग किया, देह के सुख पर ध्यान नहीं दिया, लोक लाज, देह का सुख, सामाजिक धर्म, कर्तव्य सब कुछ तिलांजलि देकर कृष्ण से प्रेम किया। इस कारण से गोपिकाओं का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, इसे प्राय सभी आचार्यों ने स्वीकार किया। भगवान चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं रम्या काज उपासना ब्रज वधु वर्गेण या कल्पित। चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है कि भगवान श्री कृष्ण के उपासना की, भजन की जितनी भी पद्धति है उसमें सबसे रम्य पद्धति, सबसे सुंदर पद्धति वो है जो ब्रज वधु वर्गेण या कल्पित है। ब्रज वधु वर्गेण, ब्रज वधुओं के समूह के द्वारा जो कल्पिता प्रवर्तित हुई है विधि, जो पद्धति गोपियों ने चलाई है कृष्ण से प्रेम करने की, वही रम्य है। रम्य का अर्थ होता है जहाँ रमण किया जा सकता, मन जहाँ लग जाए, मतलब सबसे आनंददायिनी विधि, सबसे महत्वपूर्ण पद्धति गोपियों की है। गोपियां कृष्ण प्रेमियों में सबसे श्रेष्ठ है। इस अध्याय में श्री गोपी जनों का जो कृष्ण स्नेह है, कृष्ण के प्रति जो अद्वितीय प्रेम है, उसी को दिखाया जा रहा है इस वर्णन के द्वारा। तो सबसे पहले वृंदावन के जलवायु का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, इत्थम सरत स्वच्छ जलम। इस प्रकार यहाँ इस प्रकार का जैसा पहले के अध्याय में वर्णन किया गया, जैसा आपने सुना, सरत स्वच्छ जलम शरद काल के द्वारा स्वच्छानी निर्मलानी जलानी जस्मिन तप बना। उस वृंदावन के जल स्वच्छ हो गए थे, वर्षा काल में वृंदावन के जल भी कुछ गंदे हो गए थे, मटमैले हो गए थे, तो शरद काल के आने पर स्वच्छ हो गए। जितने भी सरोवर स्वच्छ हो गए, नदी भी स्वच्छ हो गई। सुअच्छ संस्कृत में शब्द, अच्छ का अर्थ होता है अपने स्वरूप में जो वस्तु है उसको अच्छ कहते हैं, और उसी को अच्छा कहते हैं हिंदी भाषा में, कौन अच्छा है वो बहुत अच्छा लगती है। अच्छा का मतलब गंदा नहीं, ठीक है अपने स्वरूप में। जब जल में कोई आगंतुक गंदगी आ जाती है तो उसको अच्छ नहीं कहेंगे, और सुअच्छ कहने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। तो सुअच्छ का अर्थ अतिशय अच्छा है, स्वच्छ। प्राय हम लोग कोई साफ सुथरी वस्तु देखते हैं, साफ देखते हैं तो कहते हैं ये स्वच्छ है, बहुत अच्छा है। तो वृंदावन के सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया, और उन सरोवरों में कमल खिले हुए थे। कमल को पद्म कहते हैं, पद्माकर सुगंधिना। इतने कमल खिले थे सरोवरों में कि लगते थे सरोवर की ये केवल पद्म के आकर खजाना है। कलयुग तो इतने जल कमल खिलते हैं जल दिखाई नहीं देता, इसीलिए उसको पद्माकर कहते हैं। जितने सरोवर थे उनमें पद्म खिले हुए थे, और उन पद्मों की सुगंध से सुगंधित वायु ना, वायु सुगंधित हो गया था। इधर तो इतने वन है, इतना वृक्ष है, लेकिन कोई सुगंधित पुष्प नहीं है, और हवा में कोई सुगंध नहीं है, है ना। इतने वृक्ष हैं लेकिन कोई सुगंध नहीं है। परंतु भारतवर्ष में हम देखे हैं कभी कभी कोई पुष्प खिलता है तो उसकी सुगंध कुछ दूर तक जाती है, अभी भी सुगंध बिखरते रहते हैं। तो संपूर्ण ब्रजमंडल शरद काल में कमलों के सुगंध से सुगंधित, हवा जो है सुगंधित, ऐसी हवा से वायु ना वातम व्याप्तम बनम, तो वन व्याप्त
शीतल सुगंधित और मंद वायु उस वन में बह रहा है। यह है भगवान के लीला का उपकरण। जहाँ परम पुरुष भगवान लीला कर रहे हैं वहाँ का ऐसा स्टेज है ये वृंदावन धाम। तो इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण क्या है किसी के लिए काम करने के लिए या कोई भी लीला करता है? लीला तो मनुष्य कर नहीं सकता, लेकिन जो कार्य करता है तो उसके लिए जल और वायु दो अनुकूल होना आवश्यक है। और इस समय अब तो मैं निगेटिव साइड भी थोड़ा बोलना चाहता हूँ, वर्णन तो करना चाहिए वृंदावन का, लेकिन निगेटिव साइड देखा जाए तो इस समय संसार का जल और वायु दोनों दूषित है ना। जल तो इतना दूषित हो गया नदियों का कि अब कोई पानी नहीं पीता है नदी का, भारतवर्ष में भी अब देख ही रहे हैं। अब कई दिन का बासी, कई महीने का पैक किया हुआ जल लोग पीते हैं और सोचते हैं कि यही हमारे लिए अमृत है और बड़े गर्व के साथ पीते हैं। इंडिया में तो कुछ लोग बोतल ले लेकर के दिखाते हैं कि हम धनी हैं, हम आइडेंटिटी वाटर नहीं पीते हैं, हम मिनरल वाटर पीते हैं। तुम्हारे लिए मिनरल वाटर मिल रहा है वो तो सब जानते हैं, तो मिनरल वाटर पीते हैं। ये मिनरल वाटर क्यों चल गया है कि और वाटर सब गायब हो खराब हो गया है ना। कहीं पीने लायक जहाँ पानी नहीं है और सांस लेने लायक हवा नहीं, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये सब नए नए शब्द, ये सब वैदिक काल में नहीं है, ग्रंथों में कहीं नहीं पाते कि एयर पॉल्यूशन हो गया, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, सब जगह सारा जगत प्रदूषित हो गया है। इसलिए हम लोग उस वृंदावन के जो दिव्य है, जिसके वृक्ष दिव्य है, सरोवर दिव्य है, जल दिव्य है और कमल दिव्य है, कमल की सुगंध दिव्य है और सुगंध से सुवासित वायु दिव्य है, हम लोग प्रदूषित जगत में रहते रहते उसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे। अपने चित्त को बहुत ऊंचा उठाना पड़ता है इसको समझने के लिए। जैसे मान लीजिए आज किसी का एडमिशन हो बच्चा क्लास में, तो बीए एमए या पीएचडी के बातों को एकाएक बताया जाए तो कैसे समझेंगे? और वो तो छोड़ दीजिए, दो चार क्लास आगे की बात भी नहीं समझ सकते। हमें दिन एक बच्चे से पूछे कि किस क्लास में हो, तो वो बोला प्री स्कूल है। तो हम तो पहले प्रथम बार शब्द बच्चों ने, अभी स्कूल से भी पहले की पढ़ाई है, स्कूल में जाने की योग्यता जो प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार के बच्चे को पीएचडी का कोर्स पढ़ाया जाए तो कैसे समझेगा? प्राकृत जगत में ही रहने वाला जीव प्राकृत जल का, प्राकृत वायु का, प्राकृत वृक्ष का अनुभव करने वाला व्यक्ति अप्राकृत वृंदावन को कैसे समझ सकता है? इसीलिए श्रीमद् भागवतम में पहले 9 स्कंध दिए गए हैं कि उनको ठीक से समझने के बाद तब दशम स्कंध को व्यक्ति समझ सकता है, ये तब योग्यता आती है। नहीं तो हम वृंदावन का भी वर्णन करेंगे सुनेंगे तो लगे वो ऐसा ही वन होगा और भगवान घूम रहे होंगे, खेल रहे होंगे, गाय चरा रहे होंगे। तो वृंदावन एक तो स्वरूपतः दिव्य है, भगवान की स्वरूप शक्ति से बना है, जड़ प्रकृति से नहीं, और उसमें भी हवा आदि बहुत सुगंधित, जल निर्मल है, उसमें कोई गंदगी नहीं है और उसका स्वाद आदि जैसा होना चाहिए वैसा है। भगवान गीता में वर्णन करते हैं कि रसो हम अप्सु, मैं अप्सु जल में रस हूँ, टेस्ट हूँ। इस संसार में बहुत वस्तुएं हैं लेकिन सबसे स्वादिष्ट वस्तु वास्तव में जल, जल से बढ़कर के कुछ भी स्वादिष्ट नहीं है। यदि आपको कष्ट करके प्यास लग जाए और उस प्यास की